नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 नए आपराधिक कानून देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने के लिए लाया गया है। श्री मोदी ने भारतीय न्याय संहिता को सच्चा सामाजिक न्याय बताया। एनआईए की विशेष अदालत ने महाबोधि मंदिर में हुए बम विस्फोट मामले में 3 दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। पैक्स चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के तहत हुए चुनाव की मतगणना जारी। इस चरण में 57% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सच्चा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी।
एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, तब संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव में आना एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा की समय सीमा 180 कार्य दिवस के लिए और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब रैयत को दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का समय मिलेगा।
बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे स्वघोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दवा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दवा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने शंकर नेत्रालय फाउंडेशन को पटना में आंखों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
शंकरा नेत्रालय जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर अस्पताल स्थापित करेगी। ये फाउंडेशन जो गरीब लोग हैं, जिनकी आय 2.5 लाख से नीचे है, उसका निःशुल्क इलाज करेगी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर वाले परिवार हैं उनका भी इलाज रियायती दर, जो पूरे देश में जो दर होगा उसे सबसे कम दरों पर इलाज करेगी। यह फाउंडेशन सभी अगल बगल राज्य में कैंप भी लगाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने सभी राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में रोगियों को उपचार की अवधि में जीविका के तहत दीदी की रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में 3 बिजली परियोजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी के नए भवन के निर्माण के लिए 67 करोड़ 60 लाख और अक्षर आंचल योजना के लिए 890 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी को 7 मंजिला बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सहरसा जिले के मत्स्यगंधा झील और उसके आसपास पर्यटकीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए 98 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई बदलाव किए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि किस्तवार की समाप्ति या 180 कार्य दिवस जो पहले हो तक रैयत स्वघोषणा दाखिल कर सकते हैं।
किस्तवार का कार्य समाप्त होने से पूर्व, यानी कि अगर उस गांव में किस्तवार प्रारंभ हो गया है और किस्तवार जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उसकी समाप्ति के पश्चात ये अब स्वघोषणा नहीं दी जा सकती है। यानी 180 कार्य दिवस या किश्तवार की समाप्ति जो भी पहले हो उतनी अवधि तक आप दावा ये स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सकते। दूसरा, खानापूरी पर्चा के पश्चात दावा आपत्तियों को दिए जाने की जो समय सीमा पूर्व में 15 दिन थी उसको अब बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया है, यानी जब खानापूरी पर्चा का वितरण किया जाता है उस तिथि से 30 कार्य दिवस तक आप अपनी दावा आपत्तियों को दे सकते हैं और इस पर सुनवाई के पश्चात जो इसका निष्पादन करने की जो समय सीमा है पूर्व में 30 दिन थी उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया।
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार अगले वर्ष सरकारी विद्यालयों में 72 दिनों की छुट्टी होगी। विभाग ने कैलेंडर में शीतकालीन छुट्टी को भी मंजूरी दी है। अगले वर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टी रहेगी। वहीं 2 जून से 21 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लंबी छुट्टी के दौरान शिक्षक बच्चों को गृह कार्य और प्रोजेक्ट के लिए टास्क भी देंगे तथा अवकाश के बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। शिक्षा विभाग ने अगले कैलेंडर वर्ष से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब अगले वर्ष जनवरी महीने से आंतरिक मूल्यांकन के लिए साप्ताहिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। वहीं पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की पटना स्थित विशेष अदालत ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए बम विस्फोट और बमों की बरामदगी के मामले में 3 दोषियों को 7-7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सब पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा ने सजा के बिंदुओं पर फिर से सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि 7 वर्ष पूर्व महाबोधि मंदिर परिसर में बम विस्फोट की घटना हुई थी। प्रदेश में पैक्स चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के तहत हुए मतदान की मतगणना आज हो रही है। मतगणना को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में 33 जिलों के 107 प्रखंडों के 1098 पैक्स के लिए कल मतदान हुआ था। कल 57% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इसके साथ ही गया, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, अरवल, भोजपुर समेत राज्य के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रखंड कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के भवन के लिए जमीन नहीं है उन्हें शीघ्र जमीन आवंटित की जाए। श्री मीणा ने पुराने और जर्जर प्रखंड कार्यालयों की जगह पर नया कार्यालय भवन बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा के तहत पंचायतों में बनने वाले खेल मैदान को लेकर लेआउट के साथ सामग्री की आपूर्ति का आदेश भी दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कंप्यूटर से छेड़छाड़ के मामले में आर्थिक अपराध इकाई EOU ने पटना और दानापुर के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि गड़बड़ी के आरोप में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और जांच की जिम्मेवारी EOU को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर निकायों में आवास बनाने के लिए 226 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नगर विकास और आवास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये राशि लाभुकों को दूसरी किस्त के रूप में दी जाएगी। यह राशि व्यक्तिगत पात्रता वाले परिवारों को अपनी भूमि पर नए मकान बनाने के लिए दी जाएगी। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा है कि सरकारी भवनों, अतिथि गृह और निरीक्षण भवनों की बुकिंग अब ऑनलाइन माध्यम से कराई जा सकती है। श्री राज ने पटना में ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि इन सरकारी भवनों को आम लोग भी बुकिंग करवा सकते हैं। सरकार ने इनके लिए किराया भी तय कर दिया है। मंत्री ने कहा कि इस फैसले से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में निवेश के 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 193 करोड़ रूपये निवेश किए जायेंगे। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने परिषद की बैठक के बाद कहा कि इसके अलावा 2 करोड़ रूपये तक पूंजी निवेश के एक और प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C59 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण शाम 4:08 पर किया जाएगा। PSLV-C59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के PROBA-3 उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा। PROBA-3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कक्षा निरूपण मिशन है। ये उपग्रह सूर्य के प्रभामंडल, इसके आसपास के वातावरण, अंतरिक्ष के मौसम और सौर पवन का अध्ययन करेंगे। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका दूरभाष नंबर है 0612221511। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेली जा रही 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता के सेवर व्यक्तिगत स्पर्धा में हरियाणा की आखिरी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ईपी व्यक्तिगत स्पर्धा के बालक वर्ग में पंजाब के बलराम जोशी ने स्वर्ण पदक जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, जमीन सर्वे कागजात 31 मार्च तक जमा होंगे। दैनिक जागरण लिखता है, बोधगया विस्फोट मामले में 3 आरोपितों को 7 साल की सजा। दैनिक भास्कर ने झारखंड से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मंत्रिमंडल का विस्तार कल, राजभवन में दोपहर 12:30 मंत्री लेंगे शपथ। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के 75 टॉपरों को किया सम्मानित। राष्ट्रीय सहारा ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर लिखा है, कुंदन कृष्णन बने एडीजी मुख्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 नए आपराधिक कानून देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने के लिए लाया गया है। श्री मोदी ने भारतीय न्याय संहिता को सच्चा सामाजिक न्याय बताया। एनआईए की विशेष अदालत ने महाबोधि मंदिर में हुए बम विस्फोट मामले में 3 दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई। पैक्स चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के तहत हुए चुनाव की मतगणना जारी। इस चरण में 57% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।